भजन संहिता 103, भजन 103 धन्यवाद प्रदान करने का लोकप्रिय भजन है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी बहुत समय नहीं हुआ है कि आप ये भूल जाएं कि आप कितने कृतज्ञ थे। भजन 103 पद 1। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। अब दाऊद स्वयं को आज्ञा दे रहा है। दाऊद अधिकतर अपने आंतरिक मनुष्य से, आत्मा से बात करता रहता था। यहां वो स्वयं को आज्ञा दे रहा है, अपने प्राण को भी आज्ञा दे रहा है कि प्रभु को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। भजन 42 पद 11 में दाऊद अपने प्राण से कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? वो अपनी भावनाओं को नहीं समझता। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं जहां आप स्वयं अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं क्यों बेचैन हूं? मैं क्यों हतोत्साह लग रहा हूं? मैं क्यों उदासी महसूस कर रहा हूं? मैं क्यों नीला पड़ा जाता हूं? मेरे प्राण, क्या गलत हुआ है? तू क्यों गिरा जाता है? तू क्या समझता है कि परमेश्वर मर गया या कोई और बात है? अब ये दूसरी मनोदशा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। भजन 103 पद 1 और 2। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम शीघ्र ही परमेश्वर की सेवा करने का फायदा भूल जाते हैं। दाऊद उन बातों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। भजन 103 पद 3 और 4। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर आपको नरक से बचाता है। पद 4 में आगे लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये नकारात्मक बात नहीं है। मसीह जीवन नकारात्मक अनुभव से दूर है, पर बहुत से लोग नकारात्मक विचारों पर जोर देते हैं। वे नकारात्मक विचार ही देखते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो इसमें बहुत से सकारात्मक विचार हैं। मैं वास्तव में नकारात्मक विचारों पर स्वयं ध्यान नहीं देता। मैं सकारात्मक विचारों द्वारा परमेश्वर की सेवा से उत्साहित होता हूं, इसलिए नकारात्मक विचार मेरे मन में आते ही नहीं हैं। वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। भजन 103 पद 5 से लेकर 8 तक। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, पुराने नियम का परमेश्वर अलग है और नए नियम का परमेश्वर अलग है। पुराने नियम का परमेश्वर बदला लेने वाला, कोप करने वाला और हत्यारा है, परंतु नए नियम का परमेश्वर प्रेम, दया और अनुग्रह करने वाला है। पुराने नियम में ये बताया गया है कि यहोवा करुणा करने वाला, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और दयावंत है। अच्छा होगा कि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पढ़ें, जब परमेश्वर के कोप की निरी मदिरा का कटोरे उन पर जो मसीह को ग्रहण नहीं करते उंडेला जाएगा। आप देखेंगे कि ये वही परमेश्वर है जो दोनों नियमों, पुराने नियम और नए नियम में प्रकटित है। प्रेम, दया और धीरज का परमेश्वर है, परंतु वो धर्मी, पवित्र और न्यायी भी है। भजन 103 पद 9 और 10। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार बदला दिया है। परमेश्वर हमारे लिए दयालु बन चुका है। भजन 103 पद 11 और 12। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। उसने कहा जितना दूर पूर्व पश्चिम से है, ना कि जितना दूर उत्तर दक्षिण से है, क्योंकि उत्तर दक्षिण से केवल 12,500 मील दूर है। आप उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव तक ही जा सकते हैं, उसके बाद आपका मुंह दक्षिण की ओर होगा, और जब आप दक्षिणी ध्रुव पहुंचेंगे तो आप फिर से उत्तर दिशा में होंगे। ये दूरी करीब 12,500 मील है, वो भी सीधे जाने पर। यदि आप अभी हवाई जहाज से पूर्व दिशा में उड़ान भरो तो पूर्व में ही चलते चले जाओगे, और यदि आप पश्चिम दिशा में उड़ान भरे तो पूरा जीवन पश्चिम में ही चलते चले जाएंगे। इसलिए मैं खुश हूं कि वो कहता है जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है, ना कि जितनी दूर उत्तर दक्षिण से है, क्योंकि मैं अपने पापों को उत्तर से दक्षिण की दूरी से अधिक दूर रखना चाहता हूं। परमेश्वर अपनी दया के कारण मेरे पापों को पूरी तरह हटा देता है, मेरे अपराध क्षमा करता है, क्योंकि ये उसकी दया है। जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, अब यहां पर वो विज्ञान के बारे में चर्चा करता है कि आकाश पृथ्वी से कितना ऊंचा है। यदा कदा वैज्ञानिक कहते रहते हैं, ओ हमने एक नई खोज की है, नई आकाश गंगा जो उससे भी दूर है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है वह 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ढूंढते रहो, आप तो केवल मेरे परमेश्वर की दया बढ़ा रहे हो, क्योंकि लिखा है जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसकी डरवियों के ऊपर प्रबल है। इसलिए मैं इन नई खोजों को पसंद करता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि वे उनके सीमित विज्ञान के आंकड़ों की व्याख्या है। मैं नहीं समझता कि वे खुद जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। उनके पास शनि ग्रह और छल्लों के लिए भी काफी आंकड़े हैं जो उन्होंने खगोल शास्त्र की पुस्तकों में से निकाले हैं। हाल ही में उन्होंने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है जिसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने पहले सिद्धांत सीखे थे, वे जाते रहे, क्योंकि अब हमारे पास अधिक सूचनाएं हैं। विज्ञान बदल रहा है, सिद्धांत बदल रहे हैं, विज्ञान के सिद्धांत बदलते रहते हैं, परंतु विज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। सत्य नहीं बदलता, इसलिए वैज्ञानिक गलत थे। परंतु वैज्ञानिक तो देवता है, क्या ऐसा नहीं है? यदि वे कहते हैं हमने मेंढक के बच्चे को खोज निकाला, तो उन्हें पता होना चाहिए वे क्या कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आकाश पृथ्वी से कितना ऊंचा है, परंतु जो भी हो उसकी ही तरह परमेश्वर की दया ऊंची है। भजन 103 पद 13 और 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हम बहुत बार इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं। हम समझते हैं कि हम जिब्राल्टर की चट्टान हैं। हम सोचते हैं चाहे शैतान आए मैं डिग नहीं सकता। बहुत बार हम शैतान को चुनौती देते हैं कि वो आकर युद्ध करें, आओ बाहर आओ और मुझसे लड़ो। परमेश्वर ऊपर से हमें देखता रहता है। पहले तो वो करुणा करने वाला है क्योंकि हमने उसका आदर किया है, और दूसरा वो तरस खाता है जैसे एक पिता अपने बच्चे पर, क्योंकि वो हमारी रचना को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य के अंदर अपने शरीर पर ध्यान देने का स्वभाव होता है, उसकी चेतना आदि सब उसका शरीर ही है। हम अपने शरीर की पूजा करने लगते हैं। मनुष्य कैसा शरीर की आराधना करता है। एक दिन हम किसी नगर को जा रहे थे कि मैंने एक व्यायामशाला में पुरुषों को व्यायाम करते देखा। व्यायामशाला में चारों ओर शीशे लगे थे। वे पुरुष सब तरह तरह से पोज बनाकर अपने शरीर को सरा रहे थे, शरीर की पूजा। परंतु परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर नीचे देखता है तो उसे हमारे शरीर की सच्चाई दिखती है कि हम मिट्टी हैं। उसे तो सदा स्मरण रहता है कि हम मिट्टी हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर मुझसे उतनी आशा नहीं रखता जितना मैं स्वयं में रखता हूं। कई बार मैं स्वयं से निराश हो जाता हूं और रोता हूं, ओह मैंने सोचा मैं उससे बलवान हूं, मैंने सोचा मैं उससे अच्छा हूं, ओह परमेश्वर मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने तुझे निराश किया। वो कहता है तुमने मुझे निराश नहीं किया, मैं जानता हूं कि तुम सदा मिट्टी ही हो। परमेश्वर निराश नहीं हुआ, मैं स्वयं में निराश था। परमेश्वर मुझे जानता है, वो मुझे मुझसे भी अधिक जानता है। वो जानता है कि मैं मिट्टी ही हूं। मैंने सोचा मैं सुपरमैन हूं, मैंने सोचा मैं एक झटके में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर कूद सकता हूं। परमेश्वर मेरे अंजर पंजर को जानता है। भजन 103 पद 15। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है। हम कुछ समय के लिए या एक क्षण के लिए फलते फूलते या समृद्ध होते हैं। भजन 103 पद 16 और 17। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा, क्योंकि मनुष्य अस्थाई है, हम मिट्टी है, हम पार्थिक है, हम क्षणभंगुर है, हम वैसे हैं जैसे घास या उसका फूल। भजन 103 पद 17। परंतु यहोवा की करुणा युग युग, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, ये एक माप है, परंतु इसी का दूसरा पहलू है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक। परमेश्वर की दया, उसकी ऊंचाई और गहराई महान है। भजन 103 पद 17 में आगे लिखा है उसके डरवियों पर। यहां मुख्य बात यही है कि जो मनुष्य उसका भय मानता है। भजन 103 पद 17 से लेकर 22 तक। और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। दाऊद स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के स्तुति गान में आमंत्रित करता है। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक है जो परमेश्वर की इच्छा और आनंद को पूरा करते हैं। तब वो उसके सारे कामों के लिए और हर जगह के लिए धन्य करने को आमंत्रित करता है कि यहोवा की स्तुति करें। भजन के अंत में दाऊद फिर से कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह।